द्वितीय महासमर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मन पुराविदों ने दक्षिण तुर्की में तेल हलफ नामक टीले की खुदाई करके आद्य ऐतिहासिक काल की संस्कृति की खोज की। ब्रितानी पुराविदों का भी तुर्की के नवपाषाण काल के स्थलों के उत्खनन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आन गर्स्तग जॉन गर्स्तग एवं जेम्स मेलात ने क्रमशः मेर्सिन एवं हेसिलर तथा सतल हुयुक नामक नौपाषाणिक स्थलों का उत्खनन कराकर तुर्की के पुरातत्व में सर्वथा एक नए अध्याय को जोड़ दिया है। ईरान के पुराविदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र सिद्ध हुआ है। हेनरी क्रेसविक रॉलिंसन ब्रितानी भारतीय सेना में एक अधिकारी था। उसे प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने का विशेष शौक था। उसे ईरान के बेहिस्तून के शिलालेख की खोज एवं पढ़ने का श्रेय है। ईरान के प्रसिद्ध शासक द्वारा प्रथम 521 से 485 ईसा पूर्व द्वारा उत्कीर्ण बेहिस्तून अभिलेख त्रिलिपिक लेख है, जो प्राचीन पारसिक एलमाइट एवं बेबीलोनियन लिपियों में उत्कीर्ण कराया गया था। रॉलिंसन ने बड़ी कठिनाई से इसकी प्रतिकृति छाप द्वारा करने में सफलता प्राप्त की थी, क्योंकि यह लेख अत्यंत ऊंचे एवं दुर्गम स्थान पर स्थित शिला पर उत्कीर्ण है। सन 1837 तक रॉलिंसन इसके प्रथम दो अनुच्छेदों को अंग्रेजी में अनुदित करने में सफल हो गया था। सन 1846 तक उसने संपूर्ण लेख का अंग्रेजी में अनुवाद पूरा कर लिया था। पृष्ठ संख्या 29। फ्रांसीसी पुराविदों ने ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन की शुरुआत की थी। ईरान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरास्थल सियाल्फ आधुनिक कशन का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया। तेपे गियान लुरिस्तान असदाबाद के उत्खनन भी फ्रांसीसी पुराविदों द्वारा किए गए। इसके अतिरिक्त एक बेतना आधुनिक हमदन हेकाटोम पिलस दमगन पर्सिपोलिस आधुनिक कुंभ रैया आदि स्थलों का ब्रितानी पुराविदों द्वारा उत्खनन कराया गया। अमेरिकन एवं जापानी पुराविदों ने भी ईरान के कतिपय प्रागैतिहासिक स्थलों का उत्खनन कराया है। सीएस कून द्वारा अनौ एवं जापानियों के द्वारा बाकू के उत्खनन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्राचीन भारत में मेसोपोटामिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण ईरान अत्यंत प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। इस तथ्य की पुष्टि पुरातात्विक अनुसंधानों से भी हुई है। चीन अपनी प्राचीन सभ्यता एवं पुरावशेषों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। 17वीं शताब्दी ईस्वी से ही यूरोप के शिक्षित वर्ग के लिए चीन एक खास तरह के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के पूर्व विदेशी पुराविदों के लिए चीन में कार्य करना राजनीतिक कारणों से संभव नहीं था। चीन में पुरातत्व की अत्यंत प्राचीन स्वदेशी एवं स्थानीय परंपरा रही है, इसलिए विदेशी पुराविदों को चीन के पुराविदों एवं जनता का सक्रिय सहयोग आसानी से प्राप्त हो सका। चीन की अकादमी एवं उसके सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। चीन में पुरापाषाण काल से मानव निवास करता आया है। इस संबंध में चीन के बीजिंग नगर के समीप स्थित चुकुतिया गुफा से प्राप्त होमो इरेक्टस या चीनी मानव की खोज से इस कथन की पुष्टि होती है। चीन के बीजिंग नगर के मेडिकल कॉलेज में शरीर संरचना विभाग में कार्यरत कनाडा के नवयुवक डॉक्टर डेविडसन ब्लैक ने चुकुतिया गुफा से प्राप्त दो चर्वणक दांतों मोलार के आधार पर चीनी मानव के रूप में एक नई स्पीसीज की रचना कर दिया था। चुकुतिया गुफा में आगे अनुसंधान को जारी रखने के लिए आवश्यक धन जुटाने की योजना बनाई गई। सन 1927 में अमेरिका की रॉकफेलर निधि से प्राप्त आर्थिक सहायता के आधार पर खोज दल का गठन किया गया। इस खोजी दल का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय था। चीन के भूतत्वविद सीली इसके अध्यक्ष थे। स्वीडन के विर्जिन बोलिन, कनाडा के डेविडसन ब्लैक, फ्रांस की इंस्टीट्यूट द पेलिंटोलॉजी द तिलहर्द के तिलहर्द द सार्दिन पियरे तथा चीन के डब्ल्यू सी पेई इस अन्वेषक दल के प्रमुख सदस्य थे। जिस समय खोज कार्य चल रहा था उस समय बीच बीच में पृष्ठ संख्या 30 अन्य विद्वान भी यहाँ पर थोड़े थोड़े समय के लिए आते रहते थे। इनमें लंदन के एलियट स्मिथ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह उत्खनन एवं खोज कार्य कई वर्षों तक चलता रहा, जिसके फलस्वरूप पशुओं के जीवाश्म एवं पाषाण उपकरण बहुत बड़ी संख्या में खोज निकाले गए, लेकिन मानव जीवाश्म नहीं प्राप्त हो सका। अंत में 2 दिसंबर सन 1929 में डब्ल्यू सी पेई की अध्यक्षता में कार्यरत दल की चीनी मानव की एक पूर्ण खोपड़ी कंप्लीट स्कल प्राप्त हुआ। जुलाई सन 1930 में मानव की एक अन्य खोपड़ी के टुकड़े प्राप्त हुए। सन 1936 तक लगभग 24 मानव खोपड़ियां या उनके टुकड़े प्राप्त किए जा चुके थे। द्वितीय महासमर के दौरान सन 1937 में चीन में जापान के आक्रमण काल में चीनी मानव के जीवाश्म सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने का निर्णय लिया गया, लेकिन युद्ध काल में ये जापानियों द्वारा समुद्र में कहीं डुबो दिए गए अथवा इनका क्या हुआ इसके विषय में कोई सूचना नहीं है। इसके बाद सन 1949 में से आज तक चीन के चुकुतिया गुफा एवं अन्य क्षेत्रों में चीनी मानव के जीवाश्म एवं कई खोपड़ियां खोज निकाली गई हैं। नौपाषाण काल में चीन में चित्रित मृदभांड एवं कृष्ण मृदभांड संस्कृतियों का विकास हुआ। जेजी एंडरसन नामक स्वीडन के पुराविद ने अनियांग नामक नवपाषाणिक स्थल का उत्खनन कराया था। सन 1928 से 37 के मध्य लीची एवं तुंगसो पी न चीनी अकादमी के तत्वाधान में अनयांग या यिन शुई नामक कांस्यकालीन संघ युगीन स्थल का उत्खनन कराया, जिसके फलस्वरूप काचित मृदभांड एवं कांस्य धातु से के बने हुए सुंदर बर्तन प्राप्त हुए। अन्य उल्लेखनीय पुरावशेषों में नक्काशी की हुई अस्थियां, कौड़ियां या सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। संघ काल के लोग अस्थियों पर चित्राक्षर लिपि में लिखते थे। इस प्रकार पुरातात्विक अनुसंधानों के फलस्वरूप चीन में अत्यंत प्राचीन काल से ही मानव के निवास की कहानी ज्ञात हो सकी है। पुरातत्व का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल प्रतीत होता है। तकनीकी विकास के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। मानव के लिए अपने अतीत के प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। संकीर्ण दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायता मिलती है। इतिहास के संबंध में नृतात्विक दृष्टिकोण अपनाने की ही वसुदेव कुटुंबकम के आदर्श को साकार किया जा सकता है। विश्व बंधुत्व के लक्ष्य को प्राचीन काल में व्यवहारिक रूप देने में अनेक कठिनाइयां रही हैं, लेकिन पुरातत्व के अध्ययन एवं अनुशीलन के माध्यम से अब इस आदर्श को कार्य रूप से परिणत किया जा सकता है। पुरातत्व के अध्ययन एवं अध्यापन के माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण को उदार तथा व्यापक पृष्ठ संख्या 31 बनाया जा सकता है। इस प्रकार पुरातत्व का अध्ययन जहां एक ओर मानव के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, उसमें तार्किक शक्ति का विकास करता है, उसे स्वस्थ चिंतन के लिए प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर मानवीय संस्कृतियों की एकता की अनुभूति भी कराता है। विभिन्न देशों की पुरातात्विक संस्कृतियों की अपनी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये विभेद ऊपरी स्वरूप या भौतिक पक्ष में दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन वे परस्पर आंतरिक एकता के सूत्र में आबद्ध भी हैं। इस तथ्य को गहराई से समझने की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार पुरातत्व के माध्यम से वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप इतिहास के परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाया जा सकता है।